वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंध चार अध्याय तीन श्लोक संख्या 5, 6, 7। तदुपसृत्य नभसीखे चराणां प्रजल्पतां सतीं दाक्षायणी देवी पितृजज्ञ महोत्सवं व्रजन्ति सर्वतो दिग्भ्य उपदेव वरस्त्रियः विमानयाना संप्रेष्ठा निष्ककंठीषु वाससः। सात श्लोक का आवृत्ति करेंगे। दृष्ट्वा स्वनिलया अभसी खेचराणां लोला अक्षी मृष्ट कुंडला पते भूतपते देवां असुक्यात अभ्यभासत। दिश्वा स्वनीलया भासे लोलाक्षे मृष्टकुंडला पतिं भूत पतिं देवां अशक्यादभ्यभासत। दृष्ट्वा स्वनीलया भासे लोलाक्षे मृष्टकुंडला पतिं भूत पतिं देवं अशुक्यादभ्यभासत। दृष्ट्वा स्वनीलया भासे लोलाक्षे मृष्टकुंडला पतिं भूत पतिं देवं अशुक्यादभ्यभासत। दृष्ट्वा स्वनीलया भासे लोलाक्षे मृष्टकुंडला पतिं भूत पतिं देवं अशोक्यादभ्यभासत। दृष्ट्वा स्वनीलया भासे लोलाक्षे मृष्टकुंडला पतिं भूत पतिं देवं शोक्यादभ्यभासत। माता जी शब्दार्थ तत् तब उपश्रुत्या सुनकर नभसे आकाश में खेचराणाम आकाश मार्ग से जाने वाले गंधर्व प्रजलपताम संलाप संलाप सती सती दाक्षायणी दक्ष की पुत्री देवी शिव की पत्नी पितृयज्ञ पितृयज्ञ महा उत्सव अपने पिता द्वारा संपन्न किया जाने वाला महान यज्ञ ब्रजंती जा रहे थे सर्वत सभी दिग्भ्य दिशाओं से उपदेव वर स्त्रिय देवताओं की सुंदर स्त्रियां विमानयाना अपने अपने विमानों से उड़ती हुई सप्रेष्ठा अपने अपने पतियों के संग निष्कंठी लॉकेट से युक्त सुंदर हार पहने सुवासस सुंदर वस्त्रों से आभूषित दृष्टवा देखकर स्वनिलयाभासे अपने घर के निकट लोलाक्षी चंचल नेत्रों वाली मृष्ट कुंडला सुंदर कान के आभूषण पते अपने पति भूत पते भूतों के स्वामी देवम देवता और शुक्यात उत्सुकता से अभ्यभासत वह बोली अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दक्ष कन्या परम साध्वी सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के वासियों को परस्पर बातें करते हुए सुना कि उसके पिता महान यज्ञ कर रहे हैं। जब उसने देखा कि सभी दिशाओं से स्वर्गवासियों की सुंदर पत्नियां जिनके नेत्र अत्यंत चंचल थे उसके घर के समीप से होकर सुंदर वस्त्रों से सजित होकर तथा कानों में कुंडल एवं गले में लाकेट युक्त हार से आभूषित होकर जा रही हैं, तो वे अपने पति भूतनाथ के पास परम उत्सुकता पूर्वक गई और इस प्रकार बोली। आप लोग दोहराएंगे, दक्ष कन्या परम साध्वी सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के वासियों को परस्पर बातें करते हुए सुना कि उसके पिता महान यज्ञ कर रहे हैं। जब उसने देखा कि सभी दिशाओं से स्वर्गवासियों की सुंदर पत्नियां जिनके नेत्र अत्यंत चंचल थे उसके घर के समीप से होकर सुंदर वस्त्रों से सजित होकर तथा कानों में कुंडल एवं गले में लॉकेट युक्त हार से आभूषित होकर जा रही हैं, तो वह अपने पति भूतनाथ के पास परम उत्सुकता पूर्वक गई और इस प्रकार बोली। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि शिव जी का निवास स्थान इस लोक में न होकर कहीं बाह्य अंतरिक्ष में था, अन्यथा विभिन्न दिशाओं से आते हुए विमानों को सती कैसे देख पाती और विमान के यात्रियों को दक्ष के द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ के संबंध में बातें करते हुए कैसे सुन पाती। सती को यहां पर दक्षायणी कहा गया है क्योंकि वह राजा दक्ष की पुत्री थी। उपदेवर से तात्पर्य है निम्न श्रेणी के देवता यथा गंधर्व, किन्नर तथा उरग, जो वास्तव में देवता न होकर देवताओं तथा मनुष्यों के बीच के प्राणी हैं। वे भी विमानों से जा रहे थे। स्वनिलयाभासे शब्द सूचित करता है कि उनके निवास स्थान के पास से जा रहे थे। यहाँ पर स्वर्ग के निवासियों की पत्नियों की वेशभूषा तथा उनके शारीरिक गठन का सुंदर वर्णन हुआ है। उनके नेत्र चंचल थे और उनके कुंडल तथा अन्य आभूषण चमचमा रहे थे। वे एक से एक सुंदर वस्त्र धारण किए थे और उन सबों ने अपने हारों में विशेष लॉकेट लगा रखे थे। प्रत्येक स्त्री अपने पति के साथ थी। इस प्रकार वे इतनी सुंदर लग रही थी कि सती की भी इच्छा हुई कि वे भी उसी प्रकार सज्जित होकर अपने पति के साथ यज्ञ में जाएं। यह स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण श्रीललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, शील प्रभुपाद की। इस अध्याय में शिव जी तथा सती का संवाद है। शिव जी को यहां पर भूतपति कहा गया है। भूतपति मतलब समस्त प्राणियों के जो ईश्वर हैं, पति हैं। पति का अर्थ होता है पोषण करने वाला। ऐसे शिव जी को प्रायः ये जाना जाता है कि वो संहार करते हैं, सृष्टि का लय करते हैं, लेकिन इस श्लोक में भूतपति शब्द से उनको संबोधित किया गया है, मतलब सभी जीवों के पालन करने में सहयोग देते हैं। शिव का अर्थ भी होता है मंगल करने वाला, शिव मतलब जो मंगलकारी हैं। शिव जी हमेशा कैलाश में ध्यान करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं लोक मंगल के लिए, और सभी जीवों के प्रति अति दयालु हैं, इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। सहज ही दया से द्रवित हो जाते हैं, शिव जी की ये स्वाभाविक विलक्षणता है, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव हैं, इसलिए सभी जीवों के प्रति प्रेम करते हैं और दया दिखाते हैं, इसलिए शिव जी को औढ़रदानी कहा जाता है। कोई उनके पास जाता है कुछ मांगने के लिए तो निराश होकर नहीं आता है, और वर देने में वो विचार नहीं करते हैं, जो कोई कुछ मांगता है उसको दे देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वदंती है या शास्त्र में भी होगा कि एक बार सती ने शिव जी से कहा कि आप सबको वरदान देते हैं, संसारिक अनेक प्रकार के भोग संपदा आप देते हैं, आप सर्व समर्थ हैं, आप महान योगी हैं, आप सब सिद्धियों के स्वामी हैं, फिर भी आप बिना घर के रहते हैं, आप एक घर बनाइए हमारे लिए। स्त्री को घर भी कहा गया है, और बिना स्त्री का घर भी नहीं होता है। गृहिणीम गृह उच्यते, कोई जब गृहस्थ होता है तो पहले घर बनाता है, घर में स्त्री को रख सकता है, या स्त्री के लिए घर बनाता है, या स्त्री ही घर है, स्त्री को भी घर कहा गया है। घर के बिना स्त्री के बिना घर भी अच्छा नहीं लगता है। तो सती ने शिव जी से कहा कि ये घर बनाइए, गृहस्थ को घर जरूरी है, बिना घर के गृहस्थी का कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता है। तो सती के बहुत निवेदन करने पर शिव जी तैयार हो गए। शिव जी तो परम विरक्त हैं, वैष्णव चूड़ामणि हैं, को घर क्या जरूरत है, वो हमेशा योग में रहते हैं, हमेशा ध्यान में रहते हैं। तो अपनी स्त्री के कहने से उन्होंने गृह का निर्माण किया, और गृह का जब निर्माण हुआ तो गृह प्रवेश करने के लिए पूजा की तैयारी हुई, उसमें यजमान पुरोहित को बुलाता है पूजा करने के लिए, तो शिव जी ने भी पुरोहित को आमंत्रित किया। तो उस समय के सबसे बड़े पुरोहित ऋत्विक, जो विधि विधान से पूजा संपन्न कर सके, रावण को उन्होंने आमंत्रित किया। रावण जो है वैदिक कर्मकांड का पंडित था, ज्योतिष शास्त्र का, खगोल शास्त्र, भूगोल और विज्ञान, समस्त भौतिक विद्याओं से संपन्न था रावण। इसलिए लोग कहते हैं कि रावण जो है अंतरिक्ष के विषय में बहुत अच्छी तरह से जानता था, अन्य ग्रहों के विषय में भी वो जानता था, 10 दिशाओं में वो भ्रमण करता था, वो स्वर्ग में भी जाता था, स्वर्ग के अधिपति देवता भी उसके अधीन रहते थे। तो रावण जो है स्वर्ग में जाने के लिए एक पुल का निर्माण करना चाहता था, स्काई ब्रिज जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला होगा, क्योंकि इसके पास ऐसी विद्या थी, विद्वान था। जैसे ही समय भारत और श्रीलंका के बीच में पुल बनाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, जो भगवान राम सेतु बंध निर्माण किए थे रामेश्वर में, आज भी उसके कुछ अवशेष हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी एक अद्भुत कार्य किए थे कि समुद्र पर उन्होंने पुल का निर्माण किया था, और ऐसा विशाल पुल जो 100 योजन में था, शायद 400 कोस में था, और उसको बनाने के लिए 4 दिन पर्याप्त था। 4 दिन में उन्होंने पुल का निर्माण किया, और उस पुल को ऐसे पत्थरों से बनाया गया जो पानी के ऊपर तैर रहा था। पुल का निर्माण हो गया जिससे भगवान राम की सेना जो है आसानी से लंका में, दूसरे राज्य में प्रवेश कर गई। तो भगवान राम का यह अद्भुत कार्य है, इसलिए भगवान को अद्भुत कर्मा कहा गया, जो अद्भुत कार्य कर सकते हैं, विलक्षण कार्य कर सकते हैं। ऐसा इतिहास में कोई भी सरकार चार दिन में पुल नहीं बना सकती है। भगवान एक विशाल पुल का निर्माण किए हैं समुद्र के ऊपर। तो उसी तरह से शिव जी एक विशाल भवन का निर्माण किए, जिसका पुरोहित जो है रावण को बनाया गया। तो रावण जो है दक्षिणा में वो घर को मांग लिया, पुरोहित जो है पूजा करने के बाद वो दान मांगता है, ने जजमान से मौखिक मांगता है, मुंह मांगा बर मांगता है। तो शिव जी कहे कि जो आप मांगिए मैं देने के लिए सक्षम हूं, आप कुछ भी मांग सकते हैं। शिव जी विचार नहीं करते हैं, तो रावण ने कहा कि ये जो आपने घर बनाया यही मुझे दे दीजिए, तो शिव जी ने दे दिया। तो इस तरह से शिव जी औढ़र दानी हैं, वो कुछ भी दे देते हैं। उसी तरह से भस्मासुर भी शिव जी का भक्त था, शिव जी से उसने भी वर मांगा था कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो जल जाएगा, तो शिव जी बिना विचार किए उसको वर दे दिए। और वर देने के बाद शिव जी के ऊपर ही वो हाथ रखने के लिए प्रयास करने लगा, तो शिव जी भागे। शिव जी विचार नहीं करते हैं कि इस वर का क्या परिणाम होगा, इसलिए शिव जी को औढ़र दानी कहा जाता है, कुछ भी दे देते हैं, विचार नहीं करते हैं। तो शिव जी परम दयालु हैं, क्योंकि वो वैष्णव हैं। वैष्णव जो है पर दुख दुखी होता है, वैष्णव के पास जो कुछ भी होता है, कोई मांगने आता है तो उसको दे देता है। वो भूत भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करता है, इसलिए शिव जी परम कल्याणकारी हैं, जीवों के मंगल करने वाले हैं। एक बार की ऐसी घटना हुई कि शिव जी सती के साथ अगस्त मुनि के पास गए त्रेता युग में, और वहां अगस्त मुनि के पास श्री राम जी से भेंट हुई। भगवान श्री राम को उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि शिव जी के आराध्य भगवान श्री राम जी हैं। तो शिव जी जब भगवान श्री राम को प्रणाम करने लगे, तो सती को शंका हो गई बाद में सती ने कहा कि आप भगवान आप श्री राम जी को क्यों प्रणाम किए, आप भी ईश्वर हैं, जगत के आप भी परम ईश्वर हैं। तो शिव जी कहे कि नहीं, हमारे आराध्य हैं भगवान श्री राम जी, जो ईश्वर के भी ईश्वर हैं, महा ईश्वर हैं, सर्वलोकै महेश्वरम। तो शिव जी बहुत भली भांति से समझाए सती को कि हमारे इष्ट देव हैं, जो अनंत शिव ब्रह्मा की भी सृष्टि करते हैं, अनंत लोकपाल दिक्पाल, जिनके भ्रकुटी के संचलन से पैदा होते हैं, जिनके रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड रहते हैं, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, और अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा विष्णु का भी सृजन करते हैं, तो हमारे इष्ट देव हैं। तो सती ने कहा कि मैं कैसे विश्वास कर सकती हूं, जो समस्त लोगों का ईश्वर है अपने पति के विरह में रो रहा है। भगवान श्री राम नर लीला कर रहे थे, मनुष्य लीला कर रहे थे, तो सीता का अन्वेषण कर रहे थे, पूछ रहे थे कि तुमने सीता को देखा है, जंगल में सामान्य मनुष्य की तरह भटक रहे थे और तपस्वी वेश में थे, पूछते थे कि आपने सीता को देखा है, जंगल के पशु पक्षियों से भी पूछ रहे थे, मधुकर श्रेणियों से भी पूछ रहे थे कि तुमने मृगनयनी सीता को इधर से जाते हुए देखा है। तो सती को बड़ा शंका हो गया, सर्प रूपी शंका जो है सती को ग्रस लिया, जैसे किसी को सर्प ग्रस लेता है तो उसके विष से प्रभावित हो जाता है, उसी तरह सती को सर्प रूपी शंका ने ग्रसित कर लिया कि नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते हैं, भगवान तो सर्वज्ञ हैं जो सब कुछ जानते हैं, वो कि अपने पति के पत्नी के विषय में नहीं जान सकते, एक सामान्य एक मूर्ख व्यक्ति की तरह पूछ रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। तो सती ने कहा कि मुझे यह भरोसा नहीं होता है कि ये भगवान है। तो सती ने कहा कि मैं इनकी परीक्षा लूंगी। शिव जी कहे कि परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। शिव जी ने बार बार सती को समझाया लेकिन सती ने माना नहीं। स्त्रियां जब हट करती हैं तो सुनती नहीं है। से नीति शास्त्र में कहा गया कि स्त्री हठ जो है बहुत बलवान होता है, स्त्रियां कोई जिद कर लेती हैं तो जल्दी नहीं मानती हैं। स्त्री हठ, बाल हठ और राज हठ, राजा अगर कोई हठ कर लेता है तो कौन समझा सकता है, और छोटे छोटे बच्चे भी अगर हठ कर लेते हैं तो भी नहीं मानते हैं, छोटे बच्चों को भी कौन समझा सकता है। तो स्त्री जो है जब हठ कर लेती है तो उसको कोई समझा नहीं सकता है। तो सती ने भी ठान लिया कि मैं सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की मैं जाकर परीक्षा लूंगी कि ये भगवान है। तो शिव जी समझ गए कि अब यहां पर कुछ अनिष्ट जो है घटने वाला है, अब कुछ घटना घटेगी। जब कोई अपने से बड़े लोगों का बात नहीं मानता है, पति गुरु और भगवान के प्रति जब कोई शंका करता है तो वहां अनिष्ट होता है। जब भगवान में कोई शंका करता है, दोष करता है, तो वहां अनिष्ट होता है, विघ्न उत्पन्न होता है। या पति और पत्नी में जहां भी सामंजस्य नहीं होता है, पति पत्नी में जहां मनमुटाव होता है तो वहां भी विघ्न उत्पन्न होता है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि पति पत्नी जहां समान विचार में रहते हैं तो वहां नित्य मंगल होता है, तो सती और शिव में वहां मनमुटाव हो गया। शिव जी कहे कि तुम परीक्षा मत लो, लेकिन सती ने माना नहीं। सती को परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा न लेने के लिए शिव जी बार बार मना किए कि ऐसा मत करो, लेकिन सती ने मानी नहीं। तो शिव जी बोले ठीक है जाओ परीक्षा लो। तो सती जो है गई जंगल में जहां भगवान श्री रामचंद्र जी विचरण कर रहे थे, और जाकर उसने सीता का रूप बनाया सती ने, और सीता का रूप बना करके जब भगवान श्री राम के सामने गई तो भगवान श्री राम प्रणाम करके पूछे कि हे सती, शिव जी कहाँ हैं? हे मां, शिव जी किधर हैं? भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने मां शब्द से संबोधित किया कि मां शिव जी किधर हैं, अब अकेली कहां घूम रही हो? भगवान श्री राम ने कटाक्ष भी किया कि आप हमेशा शिव जी के साथ रहती हो, आज अकेली क्यों घूम रही हो? स्त्री को कभी भी अकेली नहीं जाना चाहिए, वो भी जंगल में। स्त्री को बिना पति का कहीं जाने का धर्म नहीं, साथ जाना चाहिए, सहधर्मिणी। स्त्री को सहधर्मिणी कहा गया, मैंने साथ साथ रहती हूं। स्त्री अर्धांगिनी है, पति के जो आधा अंग है, तो अधूरा नहीं जाना चाहिए। अधूरा होने पर सब काम अधूरा हो जाता है। और पत्नी जब पति के साथ रहती है तो सर्वांगिणी, संपूर्ण अंग से रहती है, नहीं तो आधा अंग में क्या होगा? आधा अंग से कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए पति और पत्नी, पत्नी को पति के साथ जो है जाना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने कहा कि आप अकेली कहां घूम रही हो? तो सती को बहुत लज्जा हुआ, और सती ने फिर देखा कि चारों तरफ सीता और राम दिखाई दे रहे हैं। जिधर भी सती देखती थी उधर सीता और राम का दर्शन हो रहा था। तो सती बहुत शर्मिंदा होकर के वापस आ गई। उधर शिव जी ने ध्यान में देख लिया कि सती ने जो है सीता का रूप बना करके परीक्षा लिया है। तो जब सती ने शिव जी के पास जब सती आई तो शिव जी ने कहा कि परीक्षा तुमने किस तरह से लिया है? तो सती ने झूठ बोला कि नहीं, मैं आपके जैसे ही उनको प्रणाम की। सती ने यह नहीं बताया कि मैं सीता का रूप लेकर के गई थी, लेकिन शिव जी तो समझ गए थे। लेकिन फिर भी सती ने झूठ बोला, तो स्त्रियों का स्वभाव है झूठ बोलना भी। ऐसा एक कवि ने लिखा है कि स्त्रियों में 8 दोष होता है, सतयुग त्रेता के स्त्रियों में भी 8 दोष होता था, झूठ बोलना और किसी को भ्रमित करना, अपवित्र रहना और कभी संतुष्ट नहीं होना, बहुत अधिक खाना, बहुत 8 दोष एक कवि ने वर्णन किया है। नारी स्वभाव सत्य कवि कहा है, अवगुण 8 सदा उड़ रही। स्त्रियों के हृदय में 8 दोष जो है हमेशा रहता है, उसका वर्णन है। मुझे याद नहीं है क्या क्या है, एक उसमें है झूठ बोलना। सती ने अपने पति से झूठ बोला, शिव जी से, जबकि शिव जी जान गए थे, शिव जी पहले ही जान गए थे, लेकिन फिर भी सती ने बोला नहीं, मैं आपके जैसे ही उनको प्रणाम किया, कुछ परीक्षा नहीं ली। सती को बोलना चाहिए था कि हाँ मैंने परीक्षा लिया, सीता का रूप बना कर लिया। तो शिव जी उसी समय से मन से सती का त्याग कर दिए, बोले अभी इस देह से तुम्हारा संबंध हमारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने सीता माँ का रूप बनाया है। सीता जो है हमारी माँ है, तुमने माँ का रूप बनाकर श्री राम जी से परीक्षा लिया है, तो आज से तुम्हारा हमारे साथ संबंध नहीं रहेगा। शिव जी ने ध्यान में बैठ गए। कई वर्षों के बाद तो एक दिन आकाश मार्ग से सती ने देखा कि बहुत सारे देवता लोग देवियों के साथ जा रहे हैं विमान में चढ़ करके। तो सती को बड़ा कौतूहल हो कि सब स्त्रियों के साथ देवता लोग जा रहे हैं और आपस में वार्तालाप कर रहे थे दक्ष के विषय में कि दक्ष बड़ा यज्ञ किए हैं। तो सती को बड़ा कौतूहल हुआ कि अरे हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और मुझे आमंत्रित नहीं किए हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। पिता का यज्ञ हो रहा है, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन सती को मालूम नहीं है। देवता लोग अपने स्त्रियों से वार्तालाप कर रहे थे उस यज्ञ के विषय में। सती को बड़ा कौतूहल हुआ, सब आपस में बात कर रहे थे, सुंदर सुंदर आभूषण और वस्त्र से सुसज्जित स्त्रियां जा रही थी। तो सती के घर के समीप से ही लोग जा रहे थे। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सती के शिव जी का घर जो है अंतरिक्ष में कहीं है, इसीलिए सती देख रही थी और बात भी सुन रही थी। देवताओं और स्त्रियों का जो वार्तालाप था वो भी सती को सुनाई पड़ रहा था। तो अंतरिक्ष में कहीं और उनका घर है। शिव जी का बहुत घर है, केवल कैलाश पर ही नहीं है, अंतरिक्ष में भी है और वैकुंठ में भी है, सदा शिव के रूप में। तो एक खेद की एक और बात है कि दक्ष ने शिव जी को क्यों नहीं आमंत्रित किया, जब सारे देवताओं को आमंत्रित किया लेकिन शिव जी को क्यों नहीं आमंत्रित किया, कि शिव जी के प्रति उनका ईर्ष्या भाव था। पहले के यज्ञ में उन्होंने प्रणाम नहीं किया था, इसलिए दक्ष को शिव जी के प्रति ईर्ष्या भाव था, इसलिए अपने परम मंगल दामाद को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था, अपने प्रिय पुत्री सती को भी आमंत्रित नहीं किया था। यही कारण था कि शिव जी उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किए गए थे पूर्व घटना के अनुसार। लेकिन सती जो है फिर भी जाना चाहती थी। सती को यह मालूम था कि शिव जी और दक्ष में तनाव है, झगड़ा है, शिव जी का और उसके पिता दक्ष का संबंध अच्छा नहीं है। फिर भी सती शिव जी के पास जाकर के बोली कि अगर आपकी राय हो तो हम लोग उस यज्ञ में चलें। सती ने कहा, हे प्राण प्रिय शिव, इस समय आपके ससुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता आमंत्रित होकर वहीं जा रहे हैं, यदि आप कहें तो हम भी चल चलें। सती ने कहा कि आपके ससुर जो है दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, अगर आप कहें तो हम लोग भी चल सकते हैं। प्रकारांतर से सती ने कहा कि आप भी चलिए साथ में, और उस यज्ञ में सभी लोग आए होंगे, हमारी और बड़ी बहनें भी आई होंगी, बहुत सारे संबंधी आए होंगे, सबसे मेल मिलाप होगा। चलिए हम लोग इस यज्ञ में चलते हैं, सब देवता लोग जा रहे हैं। सती को मालूम था कि उस यज्ञ में सब लोग आमंत्रित हैं, शिव जी आमंत्रित नहीं। शिव जी ने कहा कि नहीं, वो तुम्हारे जो पिताजी हैं हमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, वहां जाने से कल्याण नहीं होगा, जाना ठीक नहीं है। शिव जी ने मना कर दिया कि मत जाओ, तुम जाओगी तो वहां बहुत अनिष्ट हो सकता है, अपमान हो सकता है। शिव जी मना कर दिए कि मन जाओ, वहां जाना अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी सती ने शिव जी की बात को माना नहीं। शिव जी समझ गए कि कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। कोई स्त्री जब अपने पति के आज्ञा का उल्लंघन करती है, अपने आदर्श पति का बात नहीं मानती है, तो वहां जाने से उसका अपमान होता है। तो शिव जी के बात को न मानकर सती जो है अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए उद्यत हो गई। बहुत आक्रोश में वो लंबी सांस लेने लगी। शिव जी ने कहा मन जाओ, तो बहुत खिन्न हो गई, बहुत क्रोध में हो गई, बोली नहीं मैं जाऊंगी। ऐसा नीति शास्त्र के अनुसार जहां किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है वहां नहीं जाना चाहिए, बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ जगह में जा सकते हैं, जैसे पिता के घर में जा सकते हैं, पूजा में जा सकते हैं, यज्ञ में जा सकते हैं। यज्ञ है, पूजा है, पिता के घर में भी जा सकते हैं। लेकिन शिव जी के प्रति दक्ष का इतना तनाव बढ़ गया था कि वो उनको अपना परम शत्रु जैसा मानता था, और उसी संबंध से सती से भी वो ईर्ष्या करता था। जब सती जो है अपने पिता के यज्ञ में गई, तो दक्ष ने बहुत अपमानित किया और अन्य लोग भी उपहास कर रहे थे, और बहनें भी, सती की जो बड़ी बहनें थी वो लोग भी हंस रही थी। प्रेम से नहीं मिली वो लोग, बड़े अपमानित ढंग से मिली, अनादर भाव से। ऐसा वर्णन केवल मां जो है, केवल मां ने स्वागत किया। सती की जो मां थी दक्ष की पत्नी, वो प्रेम से मिली। प्रसूति सती के मां का नाम था, प्रसूति ने आदर से मिला, स्वागत किया। अन्य लोग बड़े अनादर से मिले, और दक्ष ने तो इतना अपमानित किया कि सती को उस अपमान से ये मन में संकल्प हो गया कि ये शरीर रखना ठीक नहीं। तो उस अपमान से सती जो है सोच लिया कि ये शरीर रखना ठीक नहीं, पिता के द्वारा जो शरीर मिला है ये शरीर रखना ठीक नहीं है, क्योंकि दक्ष जो है सती सहित शिव जी का भी अपमान किया, और शिव जी का उस यज्ञ में कोई भाग नहीं था। सभी देवताओं के लिए मंच बना हुआ था, भाग था, लेकिन शिव जी समस्त यज्ञों के महान अधिकारी हैं। शिव और ब्रह्मा भगवान के परम भक्त हैं, और वो यज्ञ के प्रधान देवता हैं। जिस यज्ञ में शिव और ब्रह्मा प्रधान नहीं होते हैं, तो यज्ञ संपन्न नहीं होता है। भगवान के साथ साथ उनके भक्तों का भाग होना जरूरी होता है। इसलिए विष्णु यज्ञ होता है तो उसमें शिव, ब्रह्मा और सारे देवताओं का पूजन होता है, तब वो यज्ञ संपन्न होता है। भगवान कहते हैं कि मुझसे मेरे भक्तों की पूजा अधिक है, मद भक्त पूजा अधिकम। भगवान के भक्तों की पूजा भगवान से भी अधिक है। तो जहां पर शिव जी का अपमान होता है, शिव जी का अनादर होता है, तो यज्ञ जो है संपन्न नहीं होता है, उसे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो दक्ष ने शिव जी को अपमान किया, उस यज्ञ में कोई उनके लिए कोई भी भाग नहीं निर्धारित किया, तो विष्णु भी उससे प्रसन्न नहीं थे और परम साध्वी सती भी खिन्न हो गई। यहां पर सती को परम साध्वी कहा गया है, जो समस्त प्रकार के तेजों को धारण करती हैं। तो सती ने शिव जी का और अपना अपमान देख करके जोग बल से अग्नि उत्पन्न की और उस यज्ञ में उन्होंने शरीर को जला दिया। तो उस यज्ञ में जब सती ने अपना शरीर छोड़ दिया तो शिव जी के जो गण थे सती के साथ में आए थे, वहां उपद्रव करने लगे, मार काट चालू हो गया। यज्ञ जो है संपन्न होने से पहले ही खंडित हो गया। उस यज्ञ में हड्डी मल मूत्र सब शिव जी के गण डालने लगे, भूत प्रेत उसमें पेशाब करने लगे और मांस हड्डी सब डाल दिए और इतना मार काट चालू हो गया कि सब देवता लोग भाग गए। किसी का हाथ कट गया, किसी का सिर कट गया और यज्ञ के जो मुख्य यजमान थे उनका सिर कट गया, दक्ष का सिर कट गया। परम वैष्णव शिव जी के अपमान से जो लोग भी उस यज्ञ में भाग लिए थे सबका कुछ न कुछ, किसी का हाथ कटा, किसी का पांव कटा, किसी का नाक कट गया, सबका अपमान हो गया। तो जो परम वैष्णव शिव जी का अपमान करता है तो उसका ये फल है। तो दक्ष का तो सिर ही कट गया और सब भाग गए, जितने पुरोहित थे ब्राह्मण थे सब भागे, अपना प्राण बचाकर भागे। तो अंत में ब्रह्मा जी फिर शिव जी के पास गए सब देवताओं को लेकर के, बहुत निवेदन किए तो शिव जी अंत में सबको क्षमा कर दिए। शिव जी वास्तव में ऐसा नहीं किए थे, शिव जी के जो गण थे वो लोग किए थे। भूतनाथ, भूतनाथ का अर्थ होता है भूतों के नाथ भी, जो भूत प्रेत हैं उनके स्वामी, और भूत मतलब सभी प्राणी। तो शिव जी इतने दयालु हैं कि जो अति पतित हैं दीनहीन हैं उनको भी आश्रय देते हैं। जो भूत प्रेत हमेशा अशुद्ध रहते हैं, अपवित्र रहते हैं, श्मशान में रहते हैं, उनको भी शिव जी आश्रय देते हैं। जैसे भगवान पतित पावन हैं वैसे शिव जी भी पतितों के रक्षक हैं और सब उनके साथ रहते हैं। शिव जी मुंडमाल धारण करते हैं, भस्म धारण करते हैं, फिर भी वो मंगलदाता हैं, पवित्र रहते हैं। और शिव जी गंगा को धारण करते हैं, गंगाधारी हैं, गंगाधर, गंगा उनके साथ रहती, इसलिए शिव जी कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। श्मशान में रहते हैं फिर भी मंगलमय रहते हैं, क्योंकि शिव जी उनके मस्तक पर रहती हैं, गंगा जी उनके मस्तक पर रहती हैं। तो गंगा का स्पर्श करने से आदमी पवित्र हो जाता है। तो शिव जी गंगा के सन्निधि हैं, गंगा को धारण करते हैं, इसलिए हमेशा पवित्र रहते हैं, अशुद्ध होते ही नहीं हैं। मुंडमाल धारण करते हैं, हड्डी का माला पहनते हैं, फिर भी शुद्ध रहते हैं, गंगा जी पवित्र कर देती हैं। गंगा जी का स्पर्श करने से पवित्र हो जाता है व्यक्ति। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिम्। हम लोग भी जल शुद्धि करते हैं तो गंगा जमुना नदियों का आह्वान करते हैं, तो गंगा जी हमेशा उनके साथ हैं और उनके ललाट पर चंद्रमा है, जो चंद्रमा से अमृत निकलता है। तो शिव जी अमृत को भी धारण करते हैं, परम पवित्र गंगा जी को धारण करते हैं और जो अमृत का स्रोत चंद्रमा है उसको धारण करते हैं। इसलिए शिव जी का कभी अमंगल कोई नहीं कर सकता है, या शिव जी जहां रहते वहां अमंगल नहीं आता है। इसलिए शिव जी विष को पी गए, क्योंकि उनके साथ चंद्रमा है, और विष को पी गए तो विष का प्रभाव शून्य हो गया और उनके गले में सुंदर नीलमणि की तरह शोभित करता है। शिव जी के संग में विष भी सुंदरता को बढ़ाने लगा। से महापुरुषों के संग में गौण वस्तु भी, तुच्छ वस्तु भी मूल्यवान हो जाती है। जैसे मणि के संग में कांच भी मणि जैसा हो जाता है, तुच्छ वस्तु भी महान हो जाता है। जैसे पारसमणि के संग में लोहा भी सोना बन जाता है, पारसमणि के संसर्ग में लोहा जाता है तो सोना बन जाता है। महापुरुषों के संग से जो जिस व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है तो भी महान बन जाता है। जैसे विष जो है मूल्यवान हो गया, नीलमणि की तरह हो गया। वो विष के प्रभाव से सब लोग भाग रहे थे, लेकिन शिव जी के संसर्ग से वो सुंदर नीलमणि की तरह हो गया गले में, और शिव जी की सुंदरता को बढ़ाता है। उसी तरह भगवान कृष्ण के मस्तक पर मोर पंख जाकर के और सुंदर हो जाता है। मोर पंख एक पक्षी का पंख है, लेकिन भगवान के मस्तक पर जाता है तो बहुत सुंदर हो जाता है। कोई व्यक्ति जो है किसी वस्तु को अपना लेता है तो उसकी महानता जो है उसमें आ जाती है। जैसे गंगा जी के संग में जब छोटी नदियां भी आती हैं, गंदे पानी का जो नाला होता है वो भी जाकर गंगा जी में मिल जाता है, वो भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। उसी तरह साधु के संग में चोर भी, उल्टा काम करने वाला भी साधु संग में जब जाता है तो भी उसका भी आचरण सुंदर हो जाता है। संग से, साधु के संग से उसका भी आचरण धीरे धीरे बदलने लगता है। संत का ये गुण है कि जब उसके संसर्ग में कोई व्यक्ति आता है तो अपने समान बना देता है। जैसे गंगा जी हो, गंगा जी के जल में कितना भी गंदा पानी बहकर आता है तो गंगा जी उसमें अपने जल में आत्मसात कर लेती हैं, वो अपने स्वरूप में बना लेती हैं। पारसमणि लोहे को सोना बना देता है, लेकिन पारसमणि नहीं बनाता है। नीति शास्त्र में कहा गया कि पारसमणि लोहे को सोना बनाता है लेकिन अपने समान नहीं बनाता है। अपने समान अगर बना देता तब उसकी महानता होती, लेकिन साधु जो है अपने समान बना देते हैं, अपने से भी अधिक बना देते हैं। साधु पारसमणि से भी महान है, वो अपने समान बना दिया, पारसमणि तो अपने समान नहीं बनाता है। तो शिव जी के सन्निधि में तुक्ष जो भूत प्रेत हैं वो भी तर जाते हैं, उनका भी कल्याण शिव जी कर देते हैं। इसलिए शिव जी भूतनाथ हैं, सब वर के देने में सक्षम है, भूतनाथ हैं। तो शिव जी अंत में ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर गए, बोले आप अब दक्ष के ऊपर कृपा कर दे, क्षमा कर दीजिए। तो शिव जी तुरंत क्षमा कर दी और दक्ष प्रजापति को अंत में बकरे का सिर जो है लगाया गया, प्लास्टिक सर्जरी कर दिया गया। और भी जितने देवता लोग थे जिनका अंग भंग हुआ था सबको जो है शिव जी ने सबको ठीक कर दिया, यथावत तुरंत दया कर दिए शिव जी, भूल गए राग द्वेष। शिव जी में राग द्वेष नहीं होता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं करते हैं। तो इस तरह से शिव जी के यहां कई गुणों को बताया गया है। सती जो है शिव जी के आदेश के विपरीत कार्य की, इसीलिए अमंगल हो गया। भगवान राम की परीक्षा भी लेने गई, शिव जी मना किए फिर भी नहीं मानी। अपने पिता के यज्ञ में भी गई, वहां भी शिव जी मना कर रहे थे कि मत जाओ, वहां जाना कल्याणकारी नहीं होगा, फिर भी सती ने नहीं माना, तो वहां भी अमंगल हुआ। और सती को अपना शरीर जो है त्यागना पड़ा। और फिर दूसरे जन्म में सती जो है पार्वती, पर्वत की पुत्री बनती हैं, हिमालय की पुत्री बनती हैं, पर्वत की पुत्री, इसलिए पार्वती नाम हुआ। पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी, इसलिए पार्वती कहा जाता है। तो पार्वती रूप में तब फिर सती, शिव जी ने पार्वती को स्वीकार किया। लेकिन सती ने जब से श्री राम जी की परीक्षा ली सीता रूप में, तो शिव जी ने त्याग कर दिया था। तो सती को भी यह आभास हो गया था कि ये शरीर रखना ठीक नहीं है। और उधर फिर अपने पिता का भी अपमान मिला, तो इसलिए सती ने कहा कि ये शरीर रखना ठीक नहीं है। तो सती ने उस यज्ञ में शरीर को त्याग दिया। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण प्रभु। भूतापतिम का अर्थ आपने बताया कि समस्त जीवियों को पोषण करने वाला है। समस्त जीवियों को पोषण करने वाला शिव जी होता है यानी कृष्ण जी होता है?
शिव जी भी हैं, भगवान भी हैं। यहाँ भूतपति का दो अर्थ है। भूत मतलब भूत प्रेत भी होता है, और भूत मतलब समस्त जीवगण। तो शिव जी समस्त जीव गणों के लिए तपस्या करते हैं, मंगल के लिए हमेशा भगवान का भजन करते हैं कि सारे जीवों का मंगल हो। शिव जी को का अर्थ ही होता है मंगल करने वाला। शिव जी लय भी करते हैं और पोषण भी करते हैं। जैसे शिव जी गंगा को धारण किए, नहीं तो शिव जी को अगर, अरे गंगा को अगर नहीं धारण करते तो प्रलय हो जाता। जब गंगा जी बिरजा नदी से कारण समुद्र से चलती हैं, तो ब्रह्मा जी उस वेग को धारण कर लिए, इतना वेग था। फिर वहां से जब गंगा चली तो गंगा का इतना वेग था कि उसके वेग से प्रलय हो जाता, लेकिन शिव जी ने धारण कर लिया लोक मंगल के लिए, कल्याण के लिए। उसी तरह जब समुद्र मंथन हुआ तो बीच से सब लोग घबरा गए, क्या होगा। तो लोक पालन के लिए, पोषण के लिए, लोक कल्याण के लिए शिव जी ने उस विष को पी गए, विष को धारण कर लिए। तो शिव जी मंगल भी करते हैं, पोषण भी करते हैं, पालन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल प्रलय ही करते हैं। इसलिए शिव जी भूतनाथ भी हैं, समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, समस्त प्राणियों का मंगल करते हैं और मार कर भी मंगल करते हैं। तो शिव जी समस्त प्राणियों के भी स्वामी हैं और भूतों के भी प्राणी हैं। भूतनाथ का दोनों अर्थ होता है। भूत माने सब, समस्त प्राणी भी होता है। तो शिव जी हमेशा मंगल करते हैं। शिव का अर्थ ही होता है मंगल करने वाला, शिवद मंगल देने वाला। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की।